मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 27 सितंबर 2019 के AFEIS के इस डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आप सबको कुछ सूचनाएं देना चाहूंगा जो हर फ्राइडे को मैं देता हूं कि सैटरडे और संडे को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आता है, लेकिन कल आपको जो प्रेस क्लिपिंग्स हैं वो एज इट इज मिलेंगी। साथ ही योजना के 2 आर्टिकल एक हिंदी इंग्लिश में और कुरुक्षेत्र के 2 आर्टिकल वे भी हिंदी में और इंग्लिश में आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। एक साप्ताहिक प्रश्न दिया जाता है जो मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है, वो आप सबके अभ्यास के लिए है और हमारे जो क्लास के स्टूडेंट होते हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाता है। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे पर्यटन विषय पर कुछ बात करूंगा और इनफैक्ट पर्यटन पर एज ए टॉपिक हो बात नहीं करने जा रहा, मैं ये बताने जा रहा हूं खासकर कि यदि आप पर्यटन जैसे विषय को तैयार कर रहे हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए तो किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, आइए उस पर हम लोग बाद में बातें करेंगे। पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। कल हमारे वित्त मंत्री जो सीतारमन जी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और इनफैक्ट इससे पहले उन्होंने जो हमारे निजी क्षेत्र के बैंक है, देखिए एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, उनकी मीटिंग पहले हो चुकी थी बकायदे, उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमारे वित्त मंत्री ने की थी और कल उन्होंने हमारे जो निजी क्षेत्र के बैंक हैं और जो निजी लघु वित्तीय संस्थान है, यानी कि वो बैंक की तरह तो नहीं है कि जो पूरी तरह से फुल फ्लेज्ड बैंक हो, लेकिन फाइनेंस का काम करते हैं वो सूक्ष्म उद्योग की तरह है आप कह लीजिए, उनके साथ बैठक की और बैठक करने के बाद जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है उन्होंने और मैं चाहूंगा कि आप इस स्टेटमेंट को समझिए। उन्होंने कहा कि हमारे जो बैंक हैं उनके पास लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसे आप सरल शब्दों में कह सकते हैं कि नकदी की कोई समस्या नहीं है, यानी कि हमारे जो बैंक हैं उन बैंकों के पास पर्याप्त रूप से धन है, कैश है और जब भी किसी को कोई जरूरत पड़ेगी, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो या कंज्यूमर हो, हमारे देश के किसान हो, उनको ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ये उन्होंने कहा। अब आप देखिए कि उनका यह स्टेटमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, एक बात तो मैं कहना चाहूंगा, देखिए अभी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत सी बातें हो रही है ना, मंदी आने वाली है और इसका ये कारण है, इसका ये कारण है, फिर सरकार भी अपने ओर से उन कारणों के निदान करने के बारे में भी सोच रही है और कुछ उपाय भी कर रही है। तो आप अभी आप देखेंगे कि पिछले लगभग एक महीने से जो फोकस है जिस सब्जेक्ट पर हमारी सरकार का और स्वाभाविक है कि मीडिया का, वो इकोनॉमी पर है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे खूबसूरत टाइम है सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए कि वो अभी बिल्कुल अर्थशास्त्र पर फोकस कर जाए, अर्थशास्त्र प्लस अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जो उसका प्रैक्टिकल फॉर्म है, आप देख रहे हैं, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो आप सीधे सीधे समझ रहे हैं वो हमारी आर्थिक व्यवस्था है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में अर्थशास्त्र है। मतलब ये बहुत अच्छा अवसर है जब आप अर्थशास्त्र को अपने ही देश में प्रैक्टिकल होते हुए देख रहे हैं, समझने का आपको अवसर मिल रहा है। मित्रों, इस अवसर को बिल्कुल मत खोइए। दूसरे सब्जेक्ट के लिए अगर आपके पास समय कम पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, अपने को फोकस कर दीजिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले टॉपिक पर। आपको बहुत अच्छी चीजें भी पढ़ने को मिल रही हैं, बहुत अच्छी चीजें सुनने को मिल रही हैं, इसका लाभ उठाइए। तो देखिए, जो बैंक होते हैं वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी होते हैं। सोचिए कि बैंक के पास अगर पैसा नहीं है तो अर्थव्यवस्था में कैसे जान आएगी। अब यहां नकदी को समझने की कोशिश करें, देखिए उसमें बकायदे ये भी कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये जो बैंक है इन्होंने कहा है कि अब वो जैसे ही बरसात खत्म होगी वो जगह जगह जाकर के लोन मेले लगाएंगे और उसमें जो जिनको भी पैसे की जरूरत होगी वो देंगे। हमारे वित्त मंत्री ने भी कहा कि हमारी डिमांड इससे जनरेट होगी। सीधी सी बात है कि जब लोन मेले लगाएंगे तो लोग धन लेंगे, ऋण लेंगे, उस ऋण का क्या करेंगे, वो पैसा बाजार में आएगा तो डिमांड जनरेट होगी और डिमांड जैसे ही किसी भी सोसाइटी में जनरेट होती है, अर्थव्यवस्था में जनरेट होती है, तो अर्थव्यवस्था में जबरदस्त रूप से तेजी आ जाती है। इसके बारे में हम लोग कई बार बातें कर चुके हैं, उसे बार बार दोहराने से मुझे मालूम है कि आपको थोड़ी सी नाराजगी ही होगी कि क्या बार बार उसी बात को दोहराना। तो दोस्तों, आप लोगों की नाराजगी से बचने के लिए अब मैं उसे दोहरा नहीं रहा हूं। आप लोग या तो अपने ढंग से समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो डेफिनेटली समझना चाहिए, तो किसी दूसरे की मदद आप लें। मित्रों, आज सेकंड घटना के रूप में मैं घटना तो नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपको कुछ शब्दों के अर्थ बताना चाहूंगा जो फिलहाल उपयोग में आ रहे हैं। और देखिए, हिंदी कि स्टूडेंट्स के साथ एक थोड़ी सी दिक्कत ये हो रही है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए, खुले मन से स्वीकार करना चाहिए कि जो नई नई शब्दावलियां आ रही हैं खासकर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, हम उनसे परिचित नहीं हो पाते। हमारे हिंदी के जो अखबार हैं बहुत कम उन शब्दावलियों का उपयोग करते हैं। हाँ, उसको समझा देते हैं वो, लेकिन अगर शब्दावलियों का उपयोग कर भी लेते हैं तो स्टूडेंट शायद पकड़ नहीं पाते। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी शब्दावलियों को लगातार अपडेट करते रहें और एग्जामिनेशन में, खासकर मेन्स में, उनका उपयोग भी करें ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि नहीं, आप भाषा के स्तर पर भी अपडेटेड हैं। तो मैं आपको 2-3 शब्दों के बारे में बताना चाहूँगा। एक है गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स, ये गिग वर्कर्स क्या होते हैं? देखिए, जो गिग वर्कर्स हैं, मैंने एक बार आप लोगों से बहुत पहले जोमेटो के बारे में बात की थी। मतलब वो एक कंपनी है, कह लीजिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसको आप ऑर्डर दे दीजिए कि हमारे यहाँ इस रेस्टोरेंट से आप ये चीज़ पहुँचा दीजिए, तो उसके जो जोमेटो के जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं वो उस रेस्टोरेंट में जाएंगे, उनका बाकायदे उसके साथ टाई अप होता है, वो सामान लेकर के आपके घर तक पहुँचा देंगे। जोमेटो कंपनी ये कर रही है, एक दो कंपनी और भी कर रही। तो अब इस जोमेटो कंपनी में जो काम करने वाले लोग हैं, वो नहीं जो ऑनलाइन बैठे हुए, ये लोग जिनके पास अपनी बाइक है या रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां से सामान लेते हैं, बॉक्स में रखते हैं, हॉट बॉक्स में, और आप तक पहुंचा देते हैं, आपसे पेमेंट लेते हैं, तो ये जो सारे वर्कर्स हैं ये गिग वर्कर्स कहलाते हैं। एक नया शब्द है, गिग वर्कर्स। तो दोस्तों, और इस तरह के जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रही है, जैसे जोमेटो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो देखिए इसकी कोई दुकान उस तरह से है नहीं, तो सारा का सारा जो प्लेटफॉर्म है उसकी दुकान कौन सी है? वो बेसिकली टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, टेक्नोलॉजी से ही सारी चीज़ें हो रही हैं। आप ओला, उबेर, ये सब टैक्सी वगैरह भी जो बुक करते हैं, कैब बुक करते हैं, ये किसके माध्यम से करते हैं? तो ये जो दूसरा शब्द है वो है टेक प्लेटफॉर्म, इनको कहते हैं टेक्नोलॉजी पर बेस्ड प्लेटफॉर्म। और एक और शब्द है वो है एग्रीगेटर फर्म। एग्रीगेटर फर्म, ये जो एग्रीगेटर फर्म है, इन्हें आप मार्केट प्लेस कह लीजिए कि एक फर्म है, मतलब ये भी उसी पर है, टेक्नोलॉजी पर ही वो सारी चीजों का लेन देन आपको करने के लिए सुविधा उपलब्ध करा रही है। यानी कि वर्चुअल मार्केट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वहां आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ये मार्केट प्लेस है जिसके लिए शब्द उपयोग में लाया जा रहा है, एग्रीगेटर फर्म। तो दोस्तों, ये कुछ शब्दों के अर्थ थे जो मुझे आपको बताने थे। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। मुख्य विषय है पर्यटन और इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे। मुझे ध्यान आ रहा है कि 4 साल पहले इस विषय पर आपसे निबंध लिखने के लिए भी कहा गया था, 4-5 साल पहले की बात होगी, और पर्यटन एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है भी। तो अब आप देखिए कि अगर पर्यटन पर आपको निबंध लिखने के लिए कहा जाए या कोई इस तरह का प्रश्न ही पूछ लिया जाए कि पर्यटन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और भारत के संदर्भ में इसकी विवेचना कीजिए, तो आप लिखेंगे क्या? देखिए, पर्यटन का नाम आप जैसे सुनते हैं आपको लगता है कि ढेर सारी चीज़ें तो आपको मालूम ही है, और सच में मालूम भी हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि सिविल सर्विस की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको मालूम है या नहीं है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और वो मालूम हो, इनफैक्ट यही है इस टॉपिक की तैयारी, इस टॉपिक को आप उस एंगल से तैयार करें। तो जब हम किसी भी टॉपिक पर इस तरह से तैयार करते हैं, तो देखिए, जरूरी नहीं कि आप उस पर 10-20 पेज का कोई चैप्टर पढ़ें, नॉट एट ऑल। आप थोड़ी सी महत्वपूर्ण चीजों को जान लें, जैसे कि मान लीजिए कि दीवाल खड़ा करने वाला मिस्त्री क्या करता है, उसको आप ईंट दे दीजिए, थोड़ी सी सीमेंट दे दीजिए, थोड़ी सी रेत दे दीजिए, हाथ में उसके जो बर्नी होती है वो दे दीजिए, वो दीवाल खड़ी कर देगा, चाहे आप चीन की दीवार बनवा लें, चीजें तो यही है ना, फिर वो दीवार खड़ी करता चला जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप थोड़े से अच्छे फैक्ट्स जुटा लें, तो अच्छे फैक्ट्स के आधार पर आप इस किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक को लेकर के पूछा गया हो, आप बड़े आराम से अपनी दीवार खड़ी कर लेंगे, बहुत खूबसूरत उत्तर दे लेंगे, ऐसे उत्तर जिनसे एग्जामिनर प्रभावित होगा। दोस्तों, आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है, और आपको मालूम है कि जो टूरिज्म का टॉपिक है डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केवल पर्यटन की दृष्टि से नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी, राइट? तो जब भी हम पर्यटन के बारे में सोचते हैं, तो देखिए हमारे दिमाग में 2 चीजें आती हैं। एक तो मनोरंजन का साधन है कि हम घूम घाम करके आ जाते हैं, दूसरा यह है कि इससे देश की आय बढ़ती है, और कुछ देश तो पूरी तरह से पर्यटन पर ही निर्भर है, उनकी जो अर्थव्यवस्था है, यहां तक कि यूरोपीय देश जो समुद्र के किनारे के, जो अफ्रीका के देश हैं, मॉरिशस जैसे देश, अगर यहां से आप पर्यटन को निकाल देना तो इनकी हालत खराब हो जाएगी, अर्थव्यवस्था पर ही आधारित है। अब चूंकि आज पर्यटन दिवस है, विश्व पर्यटन दिवस है, तो आपको अखबारों में बकायदे पर्यटन पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें पढ़ने को मिल जाएंगी। जैसे पर्यटन दिवस है, तो क्यों पर्यटन दिवस है, तो आपको एक फैक्ट मिल जाएगा कि भाई 1970 में आज के दिन ही खासकर जो पर्यटन का जो संविधान था, पर्यटन संगठन का जो संविधान था, वो स्वीकार किया गया था। और 1980 में यह घोषणा की गई कि 27 सितंबर को हम विश्व पर्यटन दिवस मनाएंगे। एक आपको फैक्ट पता लग गया। फिर आज जब आप और आगे पढ़ेंगे अलग अलग अखबारों में, तो आपको कुछ बड़े फैक्ट्स मिलेंगे। जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि पूरी की पूरी दुनिया में जितने भी पर्यटक आते हैं, उसमें से सबसे ज्यादा पर्यटक जो हैं फ्रांस में जा रहे हैं। फ्रांस में लगभग 9 करोड़ टूरिस्ट जाते हैं। सबसे पहला देश है, मतलब सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन। और मजेदार बात है कि फ्रांस की जो पॉपुलेशन है वो 7.25 करोड़ है। 7.25 करोड़ पॉपुलेशन और लोग कितने जा रहे हैं, 9 करोड़। तो अर्थव्यवस्था में योगदान सोच करके देखिए। जबकि भारत में कितने लोग पर्यटन आ रहे हैं, भारत में 2.25 करोड़। कहां सोचिए कि 9 करोड़, 7.25 करोड़ की आबादी में 9 करोड़, और हमारे यहां 130 करोड़ की आबादी में सिर्फ 2.25 करोड़। और इतना बड़ा देश है और हमारे पास पर्यटन के लिए इतने सारे साधन हैं, इतने सारे स्थल हैं, हर तरह के पर्यटन की सुविधा है, यानी कि कितनी गुंजाइश है। ठीक है, चलिए हमको ये पता लग गया। अब हम भारत पर आ जाएंगे। भारत पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमको मालूम होनी चाहिए। जैसे टूरिज्म का योगदान हमारे GDP में कितना है पता लग जाएगा आपको, 9.2%। चलिए आप 9.2% एग्जैक्ट याद नहीं रख सकते, तो 9% तो याद रख सकते हैं। हमारे जो पूरे के पूरे रोजगार में टूरिज्म से कितने लोग जुड़े हुए हैं, 8.1%। तो बड़ा पैरेलल है, देखिए आप 9% जो है ना GDP में योगदान है और 8% लोग इससे जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे हमारा पर्यटन नो डाउट कि 10-12% की दर से वृद्धि कर रहा है, और खासकर भारत ने इसके लिए क्या क्या कोशिशें की हैं, अतुल्य भारत के ऐड भी आपको अखबारों में मिलेंगे, दूरदर्शन पर भी आते हैं, जो 2002 में शुरू किया गया है। कुछ राज्यों ने भी, जैसे राजस्थान पर्यटन के मामले में बहुत पब्लिसिटी कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। पहले सा अनविल से तो आप यूं कह लीजिए कि राजस्थान एक तरह से वर्ल्ड मैप पर आ गया। हमारे जो खजुराहो हैं, ताजमहल है, वर्ल्ड मैप पर आ चुके हैं पर्यटन के। भारत सरकार भी लगातार जबरदस्त रूप से पर्यटन को विकसित करने की कोशिश कर रही है। कहीं बुद्धा सेक्टर बनाया जा रहा है तो कहीं कुछ, और सरकार ने अब जो ऑनलाइन वीजा पर्यटन के लिए देने की घोषणा की, यानी कि सरकार अपने लेवल पर पर्यटन को बढ़ाने के लिए कौन कौन से उपाय कर रही है। थोड़े से इन तथ्यों को जान लीजिए, 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लीजिए, बस ये आपके ईंट गारा जिसको आप कहते हैं ये हो गया। अब आप दीवार चुनने शुरू कर दीजिए। अब जैसे प्रश्न उसने पूछे हैं, निबंध पूछा है तो निबंध लिखिए, जिस तरह से भी पूछा हो उस तरह से लिखिए। कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट ले लीजिए कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो उन्होंने कहा कि अब भारत के लिए मैं कुछ करना चाह रहा हूं, तो उनको कहा गया कि नहीं, भारत को कुछ करने से पहले यह जरूरी है जो है कि तुम भारत को समझो, क्योंकि अभी तक तो तुम दक्षिण अफ्रीका में रहे हो 20-22 साल तक, तो पहले भारत में घूमो। तो उन्होंने तीसरे दर्जे के रेलवे के डब्बों में बैठ करके भारत का भ्रमण किया। और यही बात अभी 3-4 दिन पहले पंकज त्रिपाठी जो एक्टर हैं उन्होंने भी कही। उन्होंने कहा कि हमको अपने बच्चों का पालन ऐसे करना चाहिए कि जब वो 17-18 साल के हो जाएं या 20 साल के हो जाएं, कुछ इसी तरह की बात उन्होंने कही, तो उनको थोड़े से पैसे दे दिए जाएं और कहें कि जाओ तुम पूरे के पूरे देश में घूमो। उनके कोई रिजर्वेशन न कराया जाए, होटल का, ट्रेन का, जहां कुछ नहीं, भारत में कोई भी चला जाए, होटल की जरूरत नहीं है, वो बड़े आराम से रहने की जगह मिल जाएगी, मंदिरों में मिल जाएगा, रेलवे के प्लेटफार्म में मिल जाएगा, धर्मशालाओं में मिल जाएंगे। उन्हें पैसा नहीं दिया जाए, उन्हें धक्के खाने दिया जाए, वो जीवन को समझें, और इससे बड़ी शिक्षा कोई हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, इस तरह के हिस्टोरिकल फैक्ट ले लीजिए जिनका इस्तेमाल आप निबंधों में बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब मुझे आप एक चीज बताइए, इतने सारे मैंने आपको फैक्ट बताए, चाहे आपको 200 शब्दों में उत्तर देना हो या 1000 शब्दों में निबंध लिखना हो, यदि आप इन फैक्ट्स को डालते हैं तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो आपका उत्तर है वो बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत और बहुत ही प्रभावशाली बन जाएगा? मित्रों, अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा होगा तो आप मेरी राय पर काम करें, और अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं इससे तो कुछ नहीं होना है, तो आप अपनी तरफ से करने के लिए तो स्वतंत्र है ही। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप देख लेंगे। मैं अब विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन एक नौजवान साथी का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के में दाखिला लिया है। इनका नाम है आदर्श मणि मिश्रा, आपका गांव है पिपरा, जिला श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश से। सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, प्रिंस कुमार न्यू दिल्ली से, मोनी खोला, इंद्रमोहन आनंद, सुरभि चौहान पाली राजस्थान से, मुदित नायक, सुयश तिर्की, अमित प्रजापति मऊ उत्तर प्रदेश से, और रोहितास गुर्जर रायपुर से। आप सबका बहुत बहुत आभार मित्रों। दो दिनों के बाद अब आप सबसे मुलाकात हो सकेगी। इन दो दिनों के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और मेरा अभिवादन भी। अब मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।